نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فعليا وأوفر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو اشرف بھی بنایا اور مختلف بھی بنایا. انسان جو ہے ایک خاصیت نہیں رکھتا بلکہ مجموعہ خاصیت ہے، بے انتہا خاصیتوں کا مالک ہے، اور یہ کسی مخلوق میں چیز موجود نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز پیدا رکھی ہے. ان تمام خاصیتوں میں سے جو بے انتہا انسان کے اندر موجود ہیں، ایک خاصیت ایسی بھی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی اہم ہے یہ چیز، اس پر سوچنا اور اس پر فکر کرنا اور اس کا دھیان رکھنا. خاصیت جو ہے انسان کے اندر وہ ہے کانسٹنٹ، اس کی پوزیشن ایک جیسی نہیں رہتی، بدلتا رہتا ہے اس کی کیفیت. حالت اس کی ایک نہیں رہتی، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، مختلف حالت رہتی ہیں اس کی. ابھی مسجد میں آئے تو اس کی حالت مختلف ہوتی ہے، نماز پڑھی تو حالت مختلف ہوگی، نماز سے فارغ ہو کے باہر گیا تو اس کی حالت پھر مختلف ہوتی ہے. جتنا ہم روزمرہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جیسے مسجد کے اندر بیٹھے تھے. مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ بھی نکلتا ہے منہ سے، اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہماری کیفیت مختلف ہو جاتی ہے. تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ماشاءاللہ گریہ بھی تاری ہو جاتا ہے، غور فکر بھی شروع ہو جاتا ہے، آیتوں بھی فکر کرتے ہیں، اور پھر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں قرآن کو پڑھنا اسی وقت تھوڑی دیر میں، پھر وہ حالت انسان کی نہیں رہتی، وہ نورانیت جو اس کے اندر ہے لائٹ باقی نہیں رہتی. حال ایسے اب دیکھیں، بڑی سی بڑی عبادت انسان کرے، عمرے پر گیا اس نے طواف کیا، خانہ کعبہ کے قریب ہوا، تو اس کی کیفیت مختلف ہوگی. آج کل تو ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون باتیں ہوتی رہتی ہیں آدمی کی، تو اسی آدمی سے آپ بات کریں گے تو آپ کچھ بات کریں گے وہ کچھ اور بات کر رہا ہو، اس کی کیفیت مختلف ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. اور جب وہ وہاں سے جدہ پہنچا، جدے میں یا ٹیکسی میں بیٹھا، تو پھر حالت اس کی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، وہ چیز نہیں رہتی، نورانیت نہیں رہتی، کیفیت بدل جاتی. اسی طرح اگر مدینہ منورہ اللہ حاضری کا شرف بخشے تو وہاں پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. یہ عجیب خاصیت ہے انسان میں، जैसे इंग्लैंड के बारे में मशहूर है ना कि मौसम बदलता है हर वक्त, इसका मिजाज बदलता रहता है, पता नहीं चलता कि बारिश होगी या धूप निकली या धूप के साथ बारिश होगी। मशीन इंसान की कैफियत है, कांस्टेंट नहीं है इसकी कोई पोजिशन। आप देख रहे हैं घर में है तो कुछ है, बाहर है तो कुछ है, बी बच्चों में बैठा था डिफरेंट है, दुकान पर गया तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अच्छी हालत नहीं है बुरी हालत, सोचे इस पर हालत का अच्छा होना बुरा होना तो अब क्या कर सकता है, तो अल्लाह ने पैदा की है, इसमें अल्लाह की हिकमतें होंगी लाजमी हिकमत में इसमें। लेकिन से इंसान इस हालत से काफिल नहीं हो सकता, काफिल नहीं हो सकता, बहुत सीरियस चीज है। वजह यह है कि जो हम अपनी हालत की नहीं पता, हम अपनी हालत की नहीं पता, और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इंसान का जो आखिर होगा पता नहीं किस वक्त हो जाए, तो उसी वक्त उस आखिरत की जो पोजीशन होगी इंसान की, अल्लाह ताला कहता है असल कामयाबी वही है जो आखिरत में कामयाब होगी, आखिरत में कामयाब होगी जिसके ज़बान से कलमा निकल गया या अल्लाह को याद कर लिया जिस वक्त जा रहा है, तो समझो वो कामयाब है। अब पता नहीं भाई वो हालत कब आ जाए, मुझे अब क्या पता, बैठी बैठी आ जाए, लोगों सिजदों में भी आ जाती हैं, रुकों में भी आ जाती हैं, घर में भी आ जाती हैं, बाहर भी आ जाती है, पता है इसका हमें नहीं। अब देखें सोचें सर उस हालत का हमें पता नहीं कब आ जाए, और कब आ जाए तो उस वक्त हमारी हालत क्या हो हमें नहीं पता, किधर हों हमें नहीं पता, क्यों बेशक कितने बड़े नमाजी हैं, कितने बड़े हम तहज्जुद गुजार हैं, कितने बड़े हम जो कुछ भी हैं पाक हैं, इबादत गुजार हैं, और जो कर लें आप दर्जे दे लें, लेकिन मामला किस पर है, आखिरी वक्त पर है। अब पता नहीं उस आखिरी वक्त पर उस आदमी का हालत क्या होती है, कि जो मैंने बताया अभी जो नमाज में डिफरेंट, नमाज के बाद डिफरेंट, वो पोजीशन तो ना हुई उस वक्त तो गया काम से, ये सोचनी बात है दोस्तों या नहीं। सोचने के लिए उनके लिए बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो समझते हैं कि हमने मरना है, उनको फिक्र है उन वाकयात की, उन हालात की, कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है, और अगर दुनिया से हम कामयाबी के साथ चले गए तो भाई वो आखिरी ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, वहाँ कामयाबी होगी। उनके लिए बहुत ही फिक्र का मुकाम है, और ऐसे जो लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिक्र किया है। हाईएस्ट क्लास जो थी, हाईएस्ट क्लास सहाबा कराम की जमात थी, और ऐसे वैसे नहीं थे, हम किसी नीचे वाले साहबी को नहीं देख रहे जिसने एक ही दफ़ा ज़ियारत की और अभी मौसम की, बल्कि आप ऐसे साहबी की मिसाल मौजूद कर लें जिनका नाम अबू बकर सद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला था, ये हाथुस्मान वो साहबी हैं कि इनके कदम कदम पे बशारतें हैं जन्नत की, अल्लाह ने अपनी रजा के पैगाम को दिए। इसकी हालत के सबब मिता आखिरत में हमारे किस तक जान के वक्त हमारी क्या हालत होती है, जिस वक्त हमारी जान का वक्त निकलने का वक्त आएगा, इस फिक्र की हालत में आप उनकी पोजीशन देखें जो हदीस में आई है, आदमी समझ जाते हैं कि भाई हम तो एक नमाजी ही हैं ना, हम तो भी थोड़े चल पाकबाज हैं, आबिद हैं, वो तो इतने बड़े साबित थे, और फिर जैसे अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला क्या बशारत उनके बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहला जो जन्नत में जाने वाला इंसान होगा वो अबू बकर सद्दीक होंगे। क्या प्यारी पूरी सहाब में वाहिद यही नहीं बल्कि फरमाया मेरा सद्दीक, अल्लाह ने फरमाते हैं जिस वक्त मेरा सद्दीक पहला आदमी होगा उसकी हालत ये होगी कि जन्नत के आठ दरवाजों से आवाज़ें पड़ रही होंगी कि हमारे पास आ जाओ, आठों दरवाजों से। बताए कितना ग्रेट इंसान थे वो सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, क्या शख्सियत थी आपके साहब, क्या मुकाम था। लेकिन ये हालत क्या थी, उनको पता था हालत का कि भाई पता नहीं मेरी हालत होगी उस वक्त या नहीं होगी जिस वक्त मैं इस दुनिया से जाऊँगा, तो इस फिक्र पर इतनी विचारों के बावजूद भी यकीन था उन पर, लेकिन फिक्र इतना था कि पता नहीं मेरी हालत उस वक्त क्या हो। तो कहते थे कि अल्लाह मुझे तो एक घास बना देता, मुझे इंसान क्यों बनाया, मुझे तो एक घास बना देता, जानवर मुझे खाते फारिग हो जाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को। इतना है आखिरत का मामला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखें आप कितने बड़े इंसान हैं, उनकी तारीफें क्या। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला एक दफ़ा खुले आसमान में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखनी थी, रात का वक्त था, खुला आसमान था जैसे हमारे मुल्क में होता है, चारों तरफ चांद की चांद सितारों ने फैलाई हुई थी अपनी चमक पूरे आसमान के ऊपर, छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे पूरे आसमान पर, बड़ा पड़ा था आसमान सितारों से। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह की नज़र पड़ी आसमान पर, चांद तो उनके पास ही था ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो चांद क्या नज़र आता जो असल चांद था, सितारे नजर आए छोटे छोटे, तो उसकी तरफ जो देखा कहने यार देखें किधर ख्याल गया, इतने तारे हैं आसमान पे, इस कदर सितारे हैं, कितने चमकदार सितारे हैं। अब फिर पूछा कि यार सुसम ये जितने सितारे आसमान पे हैं क्या किसी इंसान की इतनी नेकियां हो सकती हैं। अजीब सवाल था माशा, तो उनको पूरे तवक्का थी कि हम जहाँ नाम निकलेगा वो सद्दीक का निकलेगा, मेरे बाबा का निकलेगा, पूरा यकीन था उनको। जहर जानते तो थे ना सारे कि आपको मुकाम कितना बड़ा है। नबी कसम तहमुल फरमा कर देखा, मुस्का कर फरमाया हाँ ऐशा एक है एक ऐसा आदमी। यार सुन वो कौन आदमी है, फरमाया उमर है वो। थोड़ा तो हिली वो हैं, अच्छा खुशी हिली कहने यार सुना तो मेरे बाबा उनका क्या होगा फिर, इतना नहीं कि तो किसी इंसान के पास हो भी सकती, ये इतने सितारे सितारों वाले लोग हैं, हंस तुम दिलदार तो मेरे बाबा क्या बनेगा, उनका क्या है। कहते हैं हाँ ऐसा बात तो सही है, लेकिन ये है कि ये सारी नेकियाँ तो उम्र की नेकी हैं सितारों के बराबर, लेकिन सारी नेकियों के बराबर अल्लाह का उम्र अबू बकर सिद्दीक की एक ही नेकी है गारे सूर जो मेरे साथ एक एक रात गारे सूर की तीन रातें गुजारे थे, एक रात जो है वो भी इसके बराबर है, सारी नेकियों के बराबर। अब बात छुप तो नहीं ना सकती, जाहिर है हसनाई सिद्दीका के वालिद की इतनी बड़ी खुशखबरी थी, तो हदीस तक हम तक आ गई ना, आखिर ये खबर फैल गई और फैलते फैलते जो पहुंची हज़रत उमर के पास, तो उनके पास ये खबर पहुंची। और अब अभी अबू सिद्दीक अबू को सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को इसका इलम नहीं था इस बात का, आपने फौरन बिस्तरा गोल किया कि चलो भाई सीधा। उसी वक्त रात का पहर था, क्या था कुंडी खड़का दी अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह, अबू उमर कैसे आना हुआ, कहते बस ज़ियारत करने आए आपकी, बैठे चाय पानी, कहते बस मुख्तसर बात करनी है आपसे। कहते हैं हाँ बताऊँ क्या बात है। कहते आज तक आपने अबू बकर सिद्दीक उमर को वापस नहीं भेजा, मुझे पता है हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आज मैं कुछ लेने आया हूँ तुम्हारे से। बड़े हैरान क्यों मतलब मुझसे क्या लेने आया तुम, मेरे पास क्या है। कहते नहीं आपके पास है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहने लगे हाँ मांग, क्या मांगते हैं दे दो। कहते मांग तो खुद कहते हैं मैंने कभी इनकार नहीं किया। कहना मैं तुमसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, गारे सूर की एक रात के सवाब मुझे दे दो और मेरी सारी नेकी तुम ले लो। हाँ वो सिद्दीक खामोश हुए थोड़ी देर, कहने और ये नहीं हो सकता ये मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी है, उस यादों को कैसे भूल जाऊँ गारे सूर में मैंने एक रात जो गुजारी। तो ये देखें कितना फिक्र है इन साहबों को, सिर्फ क्या फिक्र नेकियों क्या भी आखिर मैं ईमान के साथ अल्लाह को राजी करता हूँ निकल जाऊँ, हमें क्या हो गया। मुझे बात आज के मुसलमान को इतना बेफिक्र है इस चीज़ से, मौत को भी हंस पड़ता है, किसी को देखता मर जाता बिल्कुल फिक्र नहीं होता। जनाजे में ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी दफरी में आए, बहुत से ऐसे जनाजे पड़ा होता है, लोग बातें कर रहे हैं खड़े पीछे दूसरी सफ में बातें कर रहे होते हैं, क्या कर किधर जाना है उस, क्या वो तुम्हारे बिजनेस का कारोबार चलना था नहीं चलना, पीछे खड़े बातें करी, आगे सामने जनाजा खड़ा पड़ा है। तो ये हमारे दिलों को तो पत्थर से भी पत्थर बन गए दिल हमारे। तो माँ तो हमें भी आनी है, कब्र हमारी भी आनी है, एक दिन हमने भी पेश होना अल्लाह के दरबार में। और फिर वो तो बड़े अच्छे जमाने के लोग थे, सहाबी ताबीन तबा ताबीन फिर औलिया-ए-अल्लाह, जमाना अब तो जमाना इतनी दूर चला गया, इतनी बहुत है कि एक लम्हा भी इंसान को अपनी हालत का पता ही नहीं है, एक हालत का एक सेकंड का नहीं पता। इतनी बुराइयां फैल गई हैं, बदियां फैल गई हैं कि आप ये समझें कि इसका इंतहाई कोई नहीं, ट्रैप करने पे इंसान का कोई इंतहाई कोई नहीं, पता ही नहीं हमारी किस पर। अभी जाने के बाद मेरी और आपकी हालत क्या होगी, हम किस हाल में हो, अल्लाह ताला इसी हालत में बुला ले ऊपर, कलमा लगने की उम्मीद है, फिर अल्लाह को याद करने की उम्मीद होगी हमें, कुछ पता ही चलता है दोस्तों के आबिद हो, जाहिद हो, माजी हो, जो कुछ भी हो, सूफी हो, एतबार किसका है, आखिरी सांस का, इस पर यकीन है या बात पर। और हालत कांस्टेंट नहीं है हमारी, तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा अल्लाह ताला ने देखें किस तरह इंतहान इंसान को डाला है, तो अपनी हालत को बदल, सुभान अल्लाह। अगर खैरियत चाहता है तो क्या कर, अपनी इस पोजीशन को बदल। और अल्लाह ने इस वाहिद ये मखलूक है, याद रखें ना, खासियत दी है ना, किसी मखलूक को ये खासियत नहीं दी, इस मखलूक को खासियत अल्लाह पाक ने दी है, इख्तियार दिया है, इसको अख्तियार दिया है, ताकत दी है कि कर सकता चाहे तो, कोई चीज ऐसी अल्लाह ने उसको अख्तियार दिया है, देखिए क्या माँ गुनाह कर तेरे भी छोड़ता हूं, जहन्नम के दाने पर चला जा, ये दुनिया के अंदर जन्नत के मजे लेने लग, दोनों चांस अल्लाह पाक ने इंसान को दिए है, खुला अख्तियार दिया है, ताकि कल जब अल्लाह के सामने पेश हो तो ये रहेगा अल्लाह ताला मैं मजबूर था, मैं क्या करता, मजबूर नहीं है इंसान। ये वो आदमी सोचता है ना बात, वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सख्त, मजबूर कोई नहीं है, पूरा अख्तियार अल्लाह पाक कि सुबह मस्जिद में आए या ना आए, पूरा अख्तियार उसको दिया है, और पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने उसको कहा है कि तू आ सकता है, उठना चाहे मस्जिद में पहुंचना चाहे तो वो काम कर सकता है, कोई दुनिया की चीज जो तू रुक रहा है तो खुद अपनी नहुसत और मनुसत से तू रुक रहा है, नमाज पढ़ने गंदे काम जो तू कर रहा है ये मैं नहीं तुझे कह रहा, बल्कि क्या है पूरा अख्तियार तुझे दिया है, यू कैन कंट्रोल इट, याद रख अल्लाह ने अख्तियार दिया इंसान को पूरा, खुद बनाता है इंसान अपने अपने मामला को। यहां भी इतनी बड़ा अल्लाह ने चैलेंज कर दिया है मोमिन को, ये देख कितनी बड़ी बात है, चाहता यह हो जब तू मेरे पास आए तो उस वक्त सिवाय मेरे तेरे दिल में कोई चीज ना हो तेरी जबान पर, इतना बड़ा इम्तहान दिया है सोचा, और रखूंगा तुझे 60 साल 70 साल दुनिया के अंदर जहां हजारों गम तुझे दे दूंगा, हर वक्त तेरी हालत को जो बदलेंगे, कभी बच्चे का गम आएगा, बीवी से लड़ाई होगी, कभी रिश्तेदार से बात होगी, कभी ये मामला होगा, कभी कितने गिरों गिर के, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मौत भी अचानक दूंगा, हालत भी ये चाहता हूं, अब वो अपनी बीवी से लड़ रहा है या बच्चों से मसरूफ है, किसी परेशानी में है, उसकी आगे मौत, तो उसके दिल पे तो सारा गुबार उसी का जमा हुआ है, जिस बेचारा जिस हालत के अंदर इंसान है, करोड़ों इंसान इससे जा रहे हैं भाई, हाँ तो अब तो ये तो अस्पताल के अंदर ये गम होते हैं इंसानों। और फिर कहा अल्लाह ने कि तख्तियार तुझे पूरा है, अपने इख्तियार पूरा है तुझे, अपने अपने आप को कंट्रोल कर, मदद मैं तेरी करता हूँ, अल्लाह पाक कहता है रास्ते में खोलता हूँ, चाहे तो तू ऐसी हालत बना सकता है अपनी, ऐसी हालत तू किसी मुकाम पर भी हो, किसी जगह भी हो, मौत के तो हर वक्त तैयार रहेगा, मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, बस एक पर्दा होगा मौत कि रूह निकलेगी, दुनिया से निकल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बरज़ख से होते हुए जन्नत के अंदर पहुंच जाएगी। جسم تیرا محفوظ ہو جائے گا قبر کے اندر. برزخ میں جمع ہوتے ہیں نا سارے لوگ, ساری دنیا جمع ہے برزخ کے اندر. جس میں موت ہوتی ہے انسان کی, موت کے بعد انسان جاتا ہے نا برزخ میں, اس کا انتقال کرتا ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کل پرسوں, جس کے بچے کا بھی انتقال ہوا تو اس کا والد انتظار کر رہا تھا, اوپر اس کا جب شہید ہوا نا ایک بچہ ایکسیڈنٹ میں, کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ماموں نے, اس کا جو انتقال ہوا تو اس نے دیکھا ماموں نے کہ بچہ جو ہے پہنچا ہے اوپر, تو اس کا والد انتظار کر رہا ہوں. اس کے پہلے انتقال ہو گیا تھا 6 مہینے, تو آتا ہے کہ بھائی تو آ گیا کہاں, فلاں کیا حال تھا, اس کا کیا حال تھا, سب کے حال پوچھتا ہے. اس کے ہاتھ پکڑتا ہے کہتا چل آج دونوں جنت میں چلتے ہیں. تو سب وہاں تو آدمی بس نکلے روپ پر زخم چلی جاتی ہے. ہم سب دیکھتے ہیں, حالات پوچھتے ہیں, بھائی فلاں کا کیا حال تھا, بہن کے ساتھ کیا معاملہ تھا, باقاعدہ پوچھتے ہیں, حالات پوچھتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا تھا, کس قسم کے معاملات چلتے ہیں, وہ ساری رپورٹ دیتا ہے کہ اس قسم چلتا ہے. ایک دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, ہم پتہ نہیں. تو اب معاملہ کیا رہا, کتنی فکر کی بات ہے انسان کے لیے کہ جو بے خبر ہو کر اس معاملے سے, کسی وقت موت کا اس کو کوئی انتظار نہیں کہ میں اپنی حالت پہ میری کیا حالت ہوگی اس وقت. کیوں آخ ہم کہیں ہم تو نماز پڑھ کے ہیں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہیں, 3 دن آدھے گھنٹے کے بعد تو نماز کا پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی پوچھنا بھی صبح کی نماز پڑھ گیا ہے اور اس سے پوچھے 10 بجے آج تو صبح کی نماز کون سی رکعت پڑھی تھی, مولوی صاحب کیا پڑھ رہے تھے, یاد ہی نہیں ہوگا اس کو یار, وہ بولا پتہ ہی نہیں صبح کی نماز کا. کیا تو اتنا نماز کی نورانیت انسان اندر آ جائے, اس کا نور سارا دن رہے, لیکن کہ حالت انسان کی بدلتی ہے. اچھا اس حالت کو کنٹرول کون کرتا ہے, یہ تو دیکھیں نا آپ, انسان سسٹم بنانا پیسے کیسے لگائے, یہ کون بدلتا رہتا ہے انسان کے حالات. یہ سارے حالات جو بدلتا رہتا ہے انسان کے اندر ہی ہے, وہ آپ کا قلب ہے. سبحان کیا ہے, قلب ہے, وہ بدلتا ہے حالات آپ کے. اور کون آئے گا اوپر سے نیچے سے, کوئی نہیں. آپ کا جو آپ کا اپنا ہے, آپ کا جو اپنا قلب ہے وہ بدلتا ہے. عربی میں قلب پتہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں تبدیل ہونے والی چیز, وہ کانسٹنٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے. دل کبھی غم زدہ ہے, کبھی خوش ہے, کبھی ہنس رہا ہے, کبھی رو رہا ہے, کبھی گناہ کی طرف جا رہا ہے, کبھی نیکی کی طرف جا رہا ہے, کبھی کچھ پڑھا رہا ہے, یہ کانسٹنٹ. اس کو کیا کہتے ہیں, قلب. یعنی ایک پوزیشن میں کبھی آپ کو قلب نہیں ملے گا, بدلنے والی چیز, جبھی تو اس کو قلب کہا جاتا ہے عربی کے اندر. دل یہ جو ہر وقت آپ کو تبدیل کرتا ہے, پورا کرتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی کانسٹنٹ پوزیشن رکھو, آ لوگ اللہ کیسے رکھے, دل کو قابو کرو, حالات قابو آ جائیں گے. اسی لیے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دل تمہارا قابو ہے, دل تمہارا قابو ہے, کیونکہ کثرت کی تو انتہا کوئی ہے نہیں نا. کثرت 10 تسبیح 12 تسبیح تو نہیں ہے, کثرت کے کثرت سے مراد کیا ہے کہ دل بھی, یعنی اگر ذکر بھی کرنا ہے تو دل ہی سے ذکر کر, قلبی ذکر. کتنا ضروری ہے آپ یہ دیکھیں قلبی ذکر انسان کے لیے. اگر یاد بھی کرنا ہے تو یہ زبانی یاد نہیں چلے گی, زبانی تسبیحات یا منہ سے نہیں. اگر کرنا ہے دل ذکر کرنا ہے اپنا, اور دل کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس پوزیشن میں تم نے لے جانے کی, کانسٹنٹ تیری پوزیشن ایک رہے. ساری عبادات وقتی ہیں لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے, اگر دل سے تم نے ذکر شروع کر دیا, قلب تیرا ذکر پہ لگ گیا, دل تیرا اگر دل اور میرے ذکر کی نسبت بن گئی, دوستی پکی ہو گئی, تو پھر تو کسی حالت میں ہو, نہ تلحکم تجارتوں کو آئے نہ ظالم, کوئی حالت ہو, تجارت کی ہو, مال کی ہو, بیکر ہو, اولاد ہو, نہ تلحکم اولاد مالک ہو, کچھ فرق نہیں پڑتا انسان پہ. کانسٹنٹ کدھر ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے, اس کو دل کو جو قابو کیا ہوتا ہے. یہ بتا واقعت میں ہے کہ بھائی بتایا خان جنید بغدادی تھے کون تھی, میں ایک شخص کو دیکھا کہ مینا کے بازار میں تھا, اور ہزاروں کا اس نے 3-4 گھنٹے کے اندر کاروبار کیا. تو میں اس کو دل کی توجہ دی, کتنا بزی ہے یہ شخص دنیا کے اندر, دھڑ دھڑ گاہک آ رہے ہیں, پیسے لوٹ رہے ہیں, اور جا رہے ہیں, لا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں اس کو دل کی طرف توجہ کی, تو میں دیکھا ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل غافل نہیں تھا, اور اللہ کو یاد کر رہا تھا. آج موت کہتے ہیں موت سے کیا گھبرانا, कांस्टेंट एक हालत हो जाती है इंसान की, सुभानअल्लाह। एक इंसान जिसकी हालत बदलती रहती है हर वक्त, कुल हयान होना, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाते हैं नबी क्या करते थे, जिस कुल्ला कुल जहान, हर वक्त किसी जगह भी आप होते थे आप अल्लाह के जिक्र में मस्त होते थे। तो ये दो ही चीजें हैं हमारे पास, या तो खुली छुट्टी दे दिल को, आएगी मौत देखी जाएगी, जा लोग करते ना वो आएगी तो यार देख लेंगे क्या परवाह यार, ओ यार बस अल्लाह देखेगा तो हो जाएगा सब ठीक है यार, नमाज तो पढ़ते हैं ना, बिल्कुल फिक्र नहीं ना उन साहब की बातों का पता, ना अल्लाह वालों की बातों का पता, ना किसी बुजुर्ग की मौत की फिक्र का पता, कुछ नहीं, इसके तो मस्त दुनिया में वाहिद दो फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह ले कहता हूँ, यकीनन याद करें आप इस चीज़ को, किसी का जो है ये एक बहुत बामकसद चीज़ है, अगर बेमकसद आप जिक्र करेंगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि हम सवाब के लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग थे, मेरे पास आया ना एक आदमी, कहते जी आप सुना है आप नक्शबंदी हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं तो हमारा दिल भी जारी कर दें, कर सकते हैं हमारा दिल भी जारी कर दें, कहते आप तो बड़ा जारी कर देते हैं, तवज्जो फरमाते हैं, हमारा दिल भी जारी कर दें आप, बिल्कुल ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबाहत नहीं, आपका दिल भी जारी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे चंद सवाल तो पूछ लूँ कि आपका दिल जारी क्यों कराना चाह रहे हैं, मकसद क्या इसका, कैसे वो दिल जारी हो जाएगा, लोगों को जारी हो जाते हैं दिल माशाल्लाह, कोई रोशनी देखता है, कोई कुछ देखता है, हमें मज़ा आएगा देखने, दिल कैसे जारी होता है, कब चल पड़ेगा, ये मकसद है आजकल लोगों को जिक्र करने का, अंदाज़ा लगाए, ये तो बता रहा हूँ आप, उधर अल्लाह कितना बड़ा मकसद दे रहा है, लअल्लकुम तुफ्लहून, वो गारंटी दे रहा है कि तुझे मैं आराम से दुनिया से निकाल लूँगा, सुभानअल्लाह, हम ये दिल जारी करना कर दो, ये आपको मालूम है कि कोई मामला भी बगैर मकसद के कुछ हुआ है, अगर आपका यही मकसद है इस मकसद को दिल जारी नहीं होते, ना हो सकते हैं कभी, क्यों कि अल्लाह के जिक्र का मकसद तो कुछ और ही है, जिस आदमी का ये मकसद हो, याद रखें जिस आदमी का ये मकसद हो और फिक्रमंद हो, वरीड हो, परेशान हो, जिसको अल्लाह जानता हो कि कितना परेशान है, ये सुन ले, जो वरीड हो, परेशान हो अपनी आखिरी जिंदगी से और मौत से, और जिसको ये पता हो कि मेरा कोई अमल भी ऐसा नहीं जो मकबूल होगा, मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं मुझे लगती कि मकबूल होगी, जो अपने आप को गुनाहों में डूबा देखता हो इंसान, इस हालत में जब इंसान हो बेसहारा समझे अपने आप को, तब उसको पता चले कि इस मकसद से कोई चीज़ मुझे निकाल सकती है तो अल्लाह का जिक्र है, और वो ढूंढता ढूंढता अरसे के बाद उसको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो कहे कि मैं तुझे अल्लाह का जिक्र सिखाता हूँ, मैं तुझे अल्लाह का जिक्र सिखाता हूँ, और कहे गारंटीड है अल्हम्दुलिल्लाह कि तू अल्लाह का जिक्र सीखेगा, मकसद क्या है इंसान का, मकसद तो होना हमारे पास जिसलिए हम अल्लाह का जिक्र सीखने जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, दिल जारी होना ये मकसद नहीं है कि कल फिर रहा है, दिल जारी हो रहा है, नूरानी आ रहा है, कोई बहुत अच्छे सुकून मिल रहा है, फलां हो रहा है और सवा मिल रहा है, इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं है इसका जिक्र का, बहुत बड़ी चीज़ है जिक्र, ये सुन ले लो ना, एक सवाब को छोड़ दे, सवाब कौन देगा इस चीज़ को, जिसकी नीयत ही सही नहीं तो सवाब उसको क्या मिलना, सवाब भी उनको मिलेगा जो किसी नीयत से काम करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज का कितना सवाब है, सवाब है या नहीं है, तो वो लोग भी तो नमाज पढ़ते थे किसके साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, आपकी इमामत होती तो पीछे वो नमाज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, खड़े होते नहीं होते थे, लेकिन उनके लिए बारह क्या हुक्म आया कि मुनाफिकीन है, जन्नत दोजक की सबसे गहरी जगहों पर इनको फेंका जाएगा, क्यों, उनकी नीयत नहीं थी, हालांकि पीछे किसके खड़े हैं, तो किसी इबादत का कोई भी इबादत आप ले लें, उसका जब तक नियत ही नहीं उस करने की उस इबादत को, उसका सवाब कैसे मिल जाएगा। हाँ अगर नियत है नमाज पढ़ने की और उस नीयत से जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह की इबादत के लिए नमाज पढ़ना है मुकम्मल, तो अल्लाह ताला कहेगा ठीक है फिर तो मैं तुझे सवाब देता हूँ। नीयत तो हमारी जिक्र की ये हो, दिल जारी हो जाए, कलब जारी हो जाए, सूफी बन जाए और फला हो जाए और बुजुर्ग बन जाए, खिलाफतें मिल जाएँ और हम आगे पीछे चलने लगें, या नेक लोग हमें कहें, या ऐसी शिकलें बना लें, बस पता नहीं मकसद पता ही कुछ मकसद पता ही नहीं। वो बेमकसद लोग हैं, वो तो वक्त गुजारी कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, उन पर असर ही कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पतन है। हाँ जिसको फिक्र हो अपनी आखिरत की कि आखिरत में वो इंसान कामयाब होता है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए फिक्रमंद हो, हमारी मंजिल क्या है सोचिए आप, मंजिल हमारी क्या है जहां हमने पहुंचना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, याद रख ये है मंजिल हमारी, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी इताअत। इस मंजिल को हासिल करने के लिए इंसान फिक्रमंद होता है कि अगर मैंने अपनी इस मंजिल को हासिल नहीं किया दुनिया में तो मैं कामयाब कैसे होऊंगा। आए ना बात सुन, इस मंजिल को हासिल करने के लिए फिर आदमी बड़ा फिक्र करता है और फिक्र करने के लिए फिर रास्ते ढूंढता है कि अल्लाह ये किस तरह मुझे रास्ता मिलेगा, मैं किधर जाऊं, फिर ढूंढता ढूंढता फिक्र करता है, अल्लाह सुबहान ताला फिर उसको किसी ऐसे इंसान के पास भेजता है कि जिसके जरिए से उसको ये रास्ता मिल सकता है। तब जाके जब वो किसी शेख के पास पहुंचता है और शेख कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे जिक्र देता हूँ, तमाम लताइफ को जिंदा करता हूँ और जिक्र के साथ, क्योंकि जिक्र की अल्लाह ने तासीर ये रखी है कि जैसे ही जिक्र करता है इंसान इस नीयत के साथ जब करता है तो शेख की तवज्जा सोने का काम करती है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जिस तरह आग से सोना पिघलता है ना इसी तरह पिघलना शुरू होता है और उसके जिस्म से सारे गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं और हर काम उस पर अतीउल्लाह रसूल इतना आसान हो जाता है ज़िंदगी में, हराम छोड़ना, बुरी चीज़ों को छोड़ना, हर अहकाम जो अल्लाह को नापसंद है बाकायदा उसको मंजिलों को तय करता चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसलिए अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कल्ब जारी हो गया जी, कल्ब नूरानी हो रहा है तो कल्ब फला हो रहा है तो रोशनी आ रही है तो फला, बड़े ढोंग खासी एक ग्रुप ऐसा ही कि जनाब नाम लेता ग्रुपों के, बस कहते हैं मराकबा करा रहे हैं, मराकबा का मकसद क्या है उनका, एडवेंटिव लोगों से उनके मुरीदीन से, आप जानते हैं मास्टर लोग हैं सब, हाँ क्या था मराकबा, बस जी हमारी हजूरी हो गई है, कैसे मैंने 5 मिनट मराकबा हजूरी हो रही है, कैसे हजूरी हो गई, बस मुझे नबी दरबार में पहुँचा दिया गया, मुझे खाना काबा का चक्कर काट रहा था, दूसरा कहता है मुझे रोशनी नजर आ रही थी, ये रिजल्ट निकलने में मराकबात के और से अल्लाह के जिक्र की है या नहीं ऐसा, और दुनिया दड़ जा रही है ना शरीर पे अमल ना कुछ भी नहीं, बस नबी क्या जी हाजिरी हो गई मेरी बाबू, मैं मदीने पहुंच गया था और मैं तवाफ कर रहा था, कितनी ढकोसले पैदा होंगे दुनिया के अंदर, ये मुझे हालात बताया। अगर इतनी आसान होता ना तो अबू सदी किस तरह रोते ना कभी भी, वो तो साथ ही बैठे थे, उनकी तो बशारतें थी, इतना यानी नाम नक्शबंदी लेते हैं जी, नक्शबंदी हम लगाए नक्शबंदी का ठप्पा है, रोशनी दिखाते हैं, कोई कहता है हम ये दिखाते हैं, कोई कहता हम फला दिखाते हैं, बस मराकबे में बैठे हैं आप, दुनिया आई बैठी है, न शुक्र न ठीक न कुछ न रवायत, और एक और वो क्या करता है पता नहीं झटके मारते हैं, वो मचलना शुरू होता है आदमी ऊपर नीचे झांकना, देखा जी करंट लगा है अल्लाह कर रहे हैं शख्स, अजीब अजीब तमाशे लोगों ने इस अल्लाह जिस इंसान ने फलाह पानी थी, या मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग इतने बेचारे आज ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं कि वो समझते हैं ये गलत है यार, ये सही आदमी है, इसके पास दिल चलते हैं रोशनी आती हैं यार, हजूर के पास पहुँचा देगा सब कुछ कर देगा मामला सब, अल्लाह का नाम मानो ये क्या चिल्ले खींचे हैं, ये सब जो है ये शैतानी वारदाते हैं, मैंने बताया ना शैतान है जो कैप्चर करता है इंसान की जन्नात, शैतान इंसान, और असल जिक्र क्या है सुभान अल्लाह, उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ हैं और उसके बोल्टन है, बोल्टन से आपने कहाँ जाना है भाई, लंदन जाना है, टिकट लिया वो गाड़ी में बैठ गए, सही है। अब गाड़ी में आप बैठे हैं और गाड़ी मतलब ट्रेन में, और ट्रेन में आप बैठे, आप साथ आपके सीट के विंडो है, अब आप देख रहे हैं जनाब झील आ रही है, पहाड़ आ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे, महसूस हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन दिल में आपके क्या है, लंदन जाना है। मंजिल को तो नहीं ना भूले आप, भूल गए। अगर आपको कहें जी उतर जाओ यहाँ, बहुत अच्छी झील है बस, आपको दिल करेगा उतरने को, कहते नहीं जी देख लो हमें लंदन जाना है, टाइम में बहुत थोड़ा है। क्यों, आपको मकसद अपना पता है कि मैंने कहाँ जाना है, लंदन जाना है, चाहे कितने खूबसूरत बीच में हालात आ रहे हैं, सीनरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपने क्या करना है, उतरना नहीं है, आप कभी नहीं उतरेगा वो आदमी, क्योंकि क्या मेरा मंजिल तो यार लंदन है, मैं यहाँ उतर के मैंने यहाँ क्या ले लूँगा। एक्जैक्टली सेम है, जिस आदमी को अपनी मंजिल का पता चलता है कि अतीउल्लाह व अती रसूल मेरी मंजिल है, और वो जिक्र की ट्रेन में बैठ जाता है, क्या करता है, जब जिक्र की ट्रेन में बैठता है तो फिर वो इन तमाशों को नहीं देखता, रंगों को नहीं देखता, वारदातों कश्फ को नहीं देखता, करामात को नहीं देखता, आते भी हैं नजर आते हैं उनको तवज्जो ही नहीं करता, क्यों, उसकी नजर में एक मंजिल है कि मैंने इस मंजिल में पहुंचना है। तो हमारे यहाँ नक्शबंदी सिलसिले में हम इसको कहते हैं, ये बच्चों जैसे अखरोट से खेलते हैं ना, ये जो साली कौलता था अखरोट समझते हैं ना, अखरोट गोलियाँ गोलियाँ ना खेलते थे, वो बनी होती हैं छोटी छोटी गोल गोल सी गुल्ली डंडा गोली इस किस्म खेलते थे, कहते हैं हमारे यहाँ ये कश्फ और कमाल जिस पर दुनिया बहुत नाजा होती है, हमारे यहाँ के बच्चे जैसे गोलियाँ खेलते हैं, हमारे इसका कोई सरोकार नहीं, हमारे यहाँ असल चीज़ है अतीउल्लाह व अती रसूल। तो भाई आप जिक्र करते हैं, पता भी है आपको अपनी मंजिल का कि हम जिक्र किस लिए कर रहे हैं, कभी ना इस किस्म की ख्वाहिश आदमी रखे, ना इससे कभी मुतासिर हो, और ना ये कोई बुजुर्गी की दलील है, क्या पता शैतान आपके साथ खेल कर रहा है ताकि इसकी तवज्जो हटा के, तवज्जो हटा दूं इसकी असल मंजिल से और उसको यहीं ड्रॉप कर दूं, थोड़ी देर बाद झील के पास बैठेगा घबरा जाएगा, यार आपका मैंने तो लंदन जाना था, इसी तरह कश्फ कलाम से आँख खुलेगी, कहते यार मैं तो मारा गया, मेरी तो मंजिल और थी, मैं किस चीज़ में गुम हो गया, लोगों की तारीफें सुन ली मैंने, और हम क्या है फलां बाप बुजुर्ग जाए ये कर देता है, फलां बुजुर्ग तो ये हो जाता है, कश्फ ये करामात है, ये कलफ कलूब है, दुनिया भागी जा रही है, इसलिए कि हमें अपनी मंजिल ही नहीं पता कि हम जिक्र क्यों करने आए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिक्र का वाहिद मकसद अगर आपके दिल में ये है कि अल्लाह अल्लाह रसूल की इताअत मुझे मिल जाए, क्योंकि ज़माने में बहुत मुश्किल है हराम से बचना, बहुत मुश्किल है अल्लाह अती रसूल, पता ही ना आप कितना मुश्किल है, और इसके बगैर चारा भी नहीं, जहन्नुम है, इसके बगैर क्या है, जहन्नुम है, खरी स्टेट कोई है ही नहीं इसके बनावट के, भाई ये मजबूरी वो मजबूरी इसलिए हराम किया फलां, कोई है सुनने वाले, वहां ना इबादत पूछी जाए कुछ, वहां सबसे पहले नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, मकसद तो सबका यही है, वो नमाजी नहीं पूछी जाएगी जो आपको वहां जो अतीउल्लाह अती रसूल ना दे दे, नमाज की तारीफ अल्लाह ने क्या की है, नमाज क्या है, फैश काम से रोकती है, कहा है नमाज, तो फिर कोई इबादत ऐसी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने जिक्र को इस तरह पेश किया है हमारे सामने कि वो डायरेक्ट दिल पे जाके असर करता है, उसकी तासीर यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि कांस्टेंट पोजीशन इंसान की एक कर देता है, बिल्कुल एक पोजीशन में कर देता है कि वो अल्लाह को भूलता ही नहीं, जब इंसान अल्लाह को भूलता नहीं तो हर अहकामात को करना उसका जिंदगी बन जाती है, आसान हो जाती है। यह है मकसद अल्लाह का जिक्र, ना कोई ना हमारे कलामात ना कुछ ना सबाब, इन चीज़ों में कोई पढ़ाई नहीं, ईसा तो अल्लाह का फजल है, सवाब दे दे ना दे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से बचते अल्लाह को राजी करते रजाए हक हमें मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। तो ये इतना बड़ा मकसद रखता है अल्लाह का जिक्र, बहुत बड़ा मकसद इसके पीछे है कि सबसे पहले हम अपने आप को टटोलें कि भाई तू क्लब चलाने के लिए आया है किस लिए है, तो हमारा पता होना चाहिए कि हम जो दीन पे चलना चाहते हैं, नबी को हम इताअत चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह ने जिन चीज़ों को हुक्म दिया करने का वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, और सुन लें कि जिसका ये हालत मन रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र से, उसकी जिसकी ये हालत बन रही है कि बहुत बुरी हालत में था और हालत उसकी तब्दील होने शुरू हुई है, पीछे ग्रेजुअली हो रही है, फर्क आ रहा है, दिन ब दिन उसमें फर्क आ रहा है उसकी सोच में, उसकी जिंदगी में, उसके हालात में, शक्ल सूरत में नहीं। ये तो मदारी भी करते हैं, तो ड्रामा बाग हर इसकी एक मुश्किल चीज़ है। इसको हमने ये तो कुछ नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इसकी तरफ तवज्जो ना देंगे हम तब्दील हो गए, ये कोई तब्दीली नहीं होती दुनिया के लिए। तब्दीली कहाँ से होगी? दिल से। हराम की तरफ हाथ ना उठ रहा हो, बुराई की तरफ तमन्ना ना डाली हो, शहवात पे कंट्रोल हो गया हो, गंदी चीज़ों का ख्याल दिल में आ ना रहा हो, दौलत की हवस ख़त्म ना हो गई हो। हकूक इबाद, माँ के हक देने हैं, बाप के हक देने हैं, बीवी के हक देने हैं, जिंदगी गुजारनी है, और ये जमा रहा है पैसे के लिए। माँ को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। ये कौन सी जिंदगी है? ये कौन सी इबादत है? आप खुद से फैसले वो हैं जो अल्लाह मुकर्रर कर दे एक चीज़ का फैसला, ना रोजे दे, जहाँ कुछ दे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखना है? शरीयत को देखना है कि मेरी जिंदगी का स्टाइल कैसा होना चाहिए, मुझ पर किस किस के हकूक। तीन तीन एक एक साल बीवी की शक्ल ही ना देखें, क्या जी भाई यहाँ पैसे रोटी कमा रहे हैं? बीवियों को तलाक दे, बीवी उधर तो आप इधर, बच्चे उधर तो आप इधर, पाल और रहे हैं वो यहाँ बैठे, क्या जी यहाँ से रोटी मिलती है? मुझे ये बताएं, ये अल्लाह को मानना है? यानी एक जिंदगी आपके, हम ये भूल ही गए ना कि हमारी जिंदगी के मकसूद और हमारी शहरी जिंदगी के दौर से कुछ पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बस शक्ल मिला के लिबास पहन लिए, इमाम पहन लिए, दाढ़ी पहन लिए, बहुत बड़े वक्त के कुतुब औलिया बन गए। इन बात में क्या रखे? हकूक हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो दी है, क्या अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह के जिक्र से जिसकी ज़िंदगी नहीं बन रही, नहीं बन रहा, वो तो बिल्कुल बेकार इंसान है। सबसे बड़ा ड्रामाबाज आदमी है तो बहुत उसके तो बुरे हालात हैं, और वो खुद जानता है अपने हालात को क्या है। लोग तो इज्जत करेंगे, माशाल्लाह बड़ा नेक आदमी जी, उसकी बात पे एतबार भी करेंगे, उसको सलाम भी करेंगे, ये तो फलां का मुरीद है, ये तो फलां चीज़ है। उसकी हकीकत को अल्लाह जानता है कि बिल्कुल तफर आदमी है। तो जहनुम कज़ामों गिरा शख्सियत, धोखेबाज इंसान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसकी तब्दीली आ रही है आस्ता आस्ता अल्लाह के जिक्र से, तो उसका जिक्र जो है गारंटीड कामयाब है, कहते हैं। और जिसके जिक्र से कमी नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला जिक्र मेरा इसकी नीयत सही नहीं है, जिक्र का कसूर नहीं है, हमारी नीयत सही नहीं है, नीयत हमारी सही नहीं है। तो सबसे पहले इजाज़त रखें किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, या जिक्र सीखना हो या जिक्र सीखना जाएं, तो कोई मकसद हो, मकसद हो भी आपका मकसद क्या है, क्यों सीखने हैं। मेरे हजरत ने मुझसे पूछा था, क्या बात है, क्यों आया? मैं ये जिक्र सीखने, मकसद क्या है? सुभानअल्लाह, ये पहला डायलॉग है मैं अपने शेख से, मकसद क्या है जिक्र सीखने का? वो तो बहुत कामिल शेख थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाम तो खैर क्या मुकाम था। आज इसको मुझसे अल्लाह ने कला दिया, बेवकूफ़ इंसान था। जैसे अब मैं कही मैं जिक्र तो इसलिए सीखने जाता हूँ कि दुनिया छोड़ दूँ और अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, कहते खड़ा हो जाओ तू सही आदमी है। अगर ये मुँह से मेरे मुँह से अल्लाह पाक ये ना निकला था तो ठुड्डा पड़ता, और ड्रामा थोड़े चलते। फिर मैं इमाम मानना चाहता हूँ, ये दाढ़ी रखना चाहता हूँ, सफेद लिबास पहन के ना काली कमली पहन के लोगों को धोखा देना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सबसे सच्चा, मुझे पैसे डालो कारोबार में, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो, फिट तूफ कहते हैं इसको अरबी के अंदर। ये मकसद ज़िंदगी का लोग एतबार कर रहे हैं, खुद भी बदनाम, शेख भी बदनाम, सिलसिला भी बदनाम, और जहन्नुम के तीसरे दर्जे के अंदर इंसान पहुंचे कम से कम। और कितनी बड़ी लाइन को ख़त्म कर दिया इसने, सोचिए। और जिसको फिर ये गम हो कि मैंने अपनी आखिरत बनानी है और मैं जिक्र सीखने हूँ, मुझे आप बताएं, तो उस इंसान को कहना पड़ेगा यार रोज़ सुबह जिक्र पे आओ, कहना पड़ेगा, या उसको कहना पड़ेगा ये गुना छोड़ दे। आप सोचें इसको कहना पड़ेगा यार ये गुना ना कर। जिनको ये कहना पड़ता है, इसको उनकी नीयत खुद ही नहीं है, वो ठीक होने ही नहीं है, उनका मकसद ही नहीं है। बना तो अल्लाह ने तो कहा है वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून, जिक्र तुम करो गुनाहों से मैं बचाता हूं। अगर बचना चाहो तो बचाएगा ना अल्लाह ताला। नीति हमारी सही नहीं तो हम होंगे कैसे सही? तो मेरे भाइयों, जिंदगी भी ज़ाया कर रहे हैं, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, بہتر سب سے طریقہ ہے اپنے اپنے مقصد کو ہم پہچانیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خالص زندگی چاہتے ہیں جو جس سے فلاح ہماری ہو, برائیں وہ ختم ہو جائیں ہماری زندگی سے, اچھائیاں مستقل آ جائیں, ہمارا کھانا پینا دکان کاروبار گھر بار بیوی بچے مکمل شریعت کے اندر ہوں, قرآن کے مطابق ہوں, اور ہماری زندگی ایک مثال ہو. اور یہ اس لیے نہ ہو کہ لوگ ہماری عزت کریں ہمیں دکھائیں, نہیں, اس لیے اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہو کہ میں سب سے زیادہ ذلیل و گندا انسان ہوں دنیا کے اندر, اندر اس کا یہ کہتا ہوگا تو ابھی بھی اس قابل نہیں ہوا جس سابق ہر وقت اپنے میں کمی دیکھے کہ ابھی کچھ نہیں, ابھی کچھ نہیں, ابھی اور کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, کثرت ذکر انسان پھر کرتا رہے گا. اس کو کون کہے گا یہ مزید, وہ تو خود پوچھے گا جی اب ذکر کہاں ہو رہا ہے, کل کدھر ہے جناب صاحب, کس کب ذکر کرائیں گے, کیسے ذکر ہوگا. آج کل تو عجیب حالات میں تین تین چار سال ذکر کیا اور خط لکھ رہے ہیں, میرا دل نہیں کرتا ذکر پہ آنے کا. تعجب ہے بس جی, ذکر تبھی تو جاٹ ہوتی ہے, ذکر لگا دل نہیں کرتا ہے, مجبوری سے بیٹھتا ہوں تو پھر میں دل کرتا چلا جاؤں. کام جو بن گیا, کام جو بن گیا, دنیا کے اندر جو شہرت مل گئی ہے اس کو, تو اب تو ایسی باتیں کرے گا نا. جب آیا تو پاگل تھا, آدھا ہوش ہی نہیں تھا, اتنی اتنی دوائیاں کھاتے تھے پھونکتے تھے, جب اللہ نے ذکر شعور دے دیا اب وہ ذکر برا لگنے لگا. آپ اندازے لگائے ہمارا, سوچ سکتے آدمی کہ جس ذکر نے انسان کی زندگی بدل دی ہو. آج مجھے کوئی کہے کہ ذکر چھوڑ دے, میں کہوں مجھے ذکر سے نفرت ہو رہی ہے, تو مجھ سے بڑا جہنم ایک انسان ہوگا کہ جس کی زندگی بدل گئی, اللہ کا نام لینا آ گیا, نمازوں کا شعور آ گیا, گناہوں سے بچنے کا طریقہ آ گیا, سب کچھ اللہ کے ذکر نے دیا. میں یہ بیٹھا کب سا خدا کی قسم کسی چیز نے دیا, سارا کچھ جو مجھ اس فقیر کو ملا ہے تو وہ کچھ بھی ہے, رہنے کا سلیقہ طریقہ جو کچھ بھی ہے, سوائے اللہ کے ذکر کے کسی نے کچھ کام نہیں کیا. میں گھنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں سیدھا انسان ہونا چاہتا ہوں, دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں نے بھائی جو کچھ بھی ہے تو الحمدللہ ہر مقام پہ ذکر نے رہبری کی ہے, ہر گناہ پہ ہاتھ ڈالتے ڈالتے گناہ سے ہاتھ پیچھے کھینچا اللہ کے ذکر میں. اتنی بڑی چیز میں اللہ نے کہا, کتنا بڑا کہا ہے, بس کلا کسن لال تو فلو گھنٹی دی اس نے, لیکن سب سے پہلے نیت ہو انسان, ان نمل اعمال ہوگا نیت, یہ نیت ہماری کیا ہے, خدا کی قسم ہو نہیں سکتا کہ نیت ہماری ہو سچے ہونے کی, اور سچے ہونے کے لیے پھر ہم اللہ کا ذکر کریں تو ذکر اثر نہ کرے انسان پر. اس کو کہنا پڑے جی ذکر کیوں نہیں آتے, جی کیوں دیر سے آتے ہو جناب, اپنے شیخ کی بیانات کیوں نہیں سنتے جناب, یہ کیوں نہیں ہوتا. اور وہ کہے جی میرا دل نہیں کرتا, بس جی میں کوشش کر رہا ہوں, میں جی بس کبھی ہو سکتا ہے دنیا کسی کام میں ہے جس میں آپ دلچسپی آپ رکھتے ہیں, کبھی ایسے کریں گے؟ جس کو جس چیز سے آپ کو محبت ہو, تین بجے اٹھ کے کر لیں گے آپ وہ کام, دو بجے اٹھ کے کر لیں گے, کون اٹھائے گا آپ؟ تو مزہ یہ ہے کہ ہم ڈھکوسلا مار رہے ہیں اگر ایسی حالت ہے. الحمدللہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, سزا نہیں کر سکتا, خود اپنی ذات سے دھوکہ مار رہے ہیں, مکمل گناہوں میں وہیں جمے ہیں, شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں ہماری, اور بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں ذکر میں, ہم سمجھتے ہیں بہت صحیح ہے. اپنے آپ کے حساب کے لیے تیار کرو, اللہ کہتا ہے ہر وقت اپنا محاسبہ کرو, ہر رات جب بستر پہ جاؤ یاد رکھو جس وقت بستر پہ لیٹو پہلے سیدھا لیٹ جاؤ, اسی حالت میں سونا ہے, سیدھا لیٹنے کے بعد ایک مراقبہ کرو, میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں محاسبے کا, دیکھیں آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کر دے گا چھوٹا سا محاسبہ. سیدھا جائیں بستر میں, لیٹنے جائیں کس وقت بھی جائیں, دو بجے جائیں, تین بجے جائیں, ایک بجے جائیں, تک جائیں, سیدھا بستر پہ لیٹ جائیں, اور لیٹنے کے بعد اگر آپ کا شیخ ہے اس کو تصور لائیں ذہن میں, اور اگر آخری مجلس سے ہیں تو اس کی مجلس کو سوچیں, بالکل یہ بتا رہا ہوں آپ, سوچنے کے بعد اپنے پر نظر ماریں اس وقت آپ اور اللہ ہے کہ تو کتنا سنسیر انسان ہے اور کتنا بے ایمان آدمی ہے, کیوں دھوکہ کر رہا ہے دنیا کے ساتھ, کیا کیا ایپ تیرے اندر, تو بتا ذرا آج تو ذکر کرنے گیا تو کس لیے گیا, کیا کیا تھا مجھے بتا, تیرے دن کا حساب دے سچے دل سے اپنے حساب لوگ, کیا کیا بدماشیاں ہم نے دن میں کی ہیں, تو ننگے ہو جاؤ اللہ کے سامنے کہ یہ واقعی یہ بھی جھوٹ بولا, یہ بھی فراڈ میں نے کیا, یہ چکر دیا, ذکر کا مقصد کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں جا رہا, بس یہ ہوا فلاں, پورا حساب اپنا بنائے بیلنس شیٹ بنانے کے بعد, اور ہاتھ اٹھا کے تین دفعہ استغفار پڑھ لیں, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ساری گناہ معاف کر دیں اسی وقت. نہیں تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل کی زندگی میری مختلف زندگی ہوگی, میں پھر بیلنس شیٹ پیش کروں گا تیرے سامنے انشاءاللہ, پھر محاسبہ کروں گا تیرے سامنے انشاءاللہ, دیکھنا اس سے کم ہوگا اللہ تعالیٰ, زیادہ نہیں ہو سکتا معاملہ. پھر آپ کو احساس ہوگا پورے دن میں نے شام کو پھر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے, حضوری ہو جائے گی آپ کو, آپ کو لگے گا کہ آپ کا حساب جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سچے ہونے والے انسان کی بات کر رہا ہوں. دوسرے دن زندگی آپ کی مختلف ہوگی, پھر پیش کرنا ہے, ہر رات سننے سے پہلے محاسبہ انسان ہوتے, مراقب موت کہتے ہیں اس کو, لیٹ جائیں چپ کر کے. بس زندگی کے ختم میں اللہ تعالیٰ میں حساب دینا چاہتا ہوں تیرے پاس, میں کیا آج کیا کیا. تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا اللہ کے فضل سے, انشاءاللہ یہ بہت اچھا مراقب ہے. چاہتا یہ ہے کہ انسان مخلص ہو جائے اپنے ساتھ, ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں, ایسے بیوقوف لوگ ہیں. اگر نیتوں کو پکا کریں, جب بھی آپ بیٹھیں ذکر میں جائیں, کل سے سوچ کے جائیں کہ میں ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زندگی کی حالت بدل جائے, زندگی کی میری حالت بدل جائے. کوئی دنیا کے مقصد کے لیے میں نہیں کر رہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا تو فلاں مانگوں گا تو فلاں مانگوں گا, سب کچھ خدا سے مل گیا, اللہ مل جائے تو مانگنے کی اور کیا ضرورت ہے. سب چیز نفی کر کے جاؤ. میں نے زندگی میں کبھی اپنے شیخ سے کچھ نہیں مانگا, ہزار کتنے سال میں ساتھ رہا, ایک چیز حضرت سے میں نے کبھی نہیں مانگی, حضرت یہ چیز دو فلاں چیز دو تعویذ دو, یہ نہیں ہو رہا بیٹا. کبھی زندگی میں کوئی بات حضرت سے نہیں کی سوائے بات کرتی اللہ کی بات, بس کوئی مختصر. تو یہ ایک ایسی ریلیشن پیدا کریں آپ, ایک انسان کا ایسا ریلیشن ہو کہ جہاں صرف اور صرف آخرت ہو, کوئی تمنا ہی نہ ہو کسی چیز کی, بس اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اللہ کو پالنا ہے, اللہ کو تلاش کرنا ہے. بہت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس, بہت تھوڑا ہے. اور بہترین عبادت اللہ پاک نے دی ہے, اس سے اچھی عبادت اللہ تک پہنچانے کے لیے اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہی نہیں جتنی کہ اللہ کا ذکر ہے, اور ذکر اللہ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دوستو کہ ہم ذکر کے مقصد کو سمجھیں اچھی طرح. ہم نے آج بات کی ہے کہ تو پردے ذکر کے, کش گراؤں یہ وہ, کچھ نہیں, صرف اور صرف عطی اللہ و عطی رسول, اللہ کے احکامات. یہ نہیں ہو رہا تو ساری زندگی کا ذکر بیکار ہے, یاد کر بالکل فنش, نتھنگ, اور کوئی چانس نہیں اب زندگی کا کہ کل کے بعد کا اگلی کل ملتی ہے یا نہیں, کوئی پتہ نہیں. پکی نہیں تاج سے کرنے میرا والا, تیرے ذکر میں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ ایسی ٹرین ہے کہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے گی. راستے کی کسی دلچسپ چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے سب دیکھنا ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. میں نے مولا ذکر سے میں کچھ نہیں چاہیے, تیری رضا مل جائے, تیری محبت مل جائے, اس سے زیادہ کچھ بس. اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے.